हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 17 एंड 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवदो वर्गीनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्म्यतमिदं तथा ग्रह न परः। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेऽपि बस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। वंशी विभूषितकरा नवनी पुरेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जानि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवस्तवे वेदे सांगपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो. सूत गोस्वामी शौनक मुनि को बता रहे हैं कि जैसे ही विदुर ने देखा कि लोग किस प्रकार घर में आसक्त रहते हैं, हर समय जीव को बस केवल अपने जो इस भौतिक शरीर से रिलेटेड व्यक्ति हैं, उनका आकर्षण अपनी ओर इतना मोहित कर देता है कि जीव को समय ही नहीं मिलता, जीव को याद ही नहीं आता कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है. तो स्पेशल जब धृतराष्ट्र को उन्होंने देखा कि सारे पुत्र भी मर गए उसके, फिर भी वो अभी तक राज्य में आसक्ति लगाए हुए बैठा हुआ है हस्तिनापुर में. उसे तो तपस्या करने के लिए कब का वानप्रस्थ ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो राज्य के मोह से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया है. तो फिर विदुर जी बहुत उनके लिए चिंतित हुए और आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परमदुस्तरः. एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रमाद विज्ञातः कालः परमदुस्तरः. एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रमाद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः. बहुत ही सुंदर यहाँ पर उपदेश हमें मिल रहा है. सुत गोस्वामी कहते एवं गृहेषु सत्तानां, एवं गृहेषु इस प्रकार, जिस प्रकार धृतराष्ट्र गृहेषु घर में सत्तानां अत्यंत ही आसक्त है, उसी प्रकार हम देखते हैं आजकल सारे जीव घर में बहुत आसक्त होते हैं और जो वास्तव में उन्हें कार्य करना चाहिए प्रमत्तानाम तदीहया, यानी कि जो उनको वास्तव में कार्य करना चाहिए उसके प्रति कोई विचार नहीं करते, उनको उसके लिए बिल्कुल लापरवाह होते हैं, एकदम बेवकूफों की तरह वो कार्य करते रहते हैं पूरा जीवन, जो कि वास्तव में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है. मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य, आज संसार में वैसे ही जीव भगवान को भूला हुआ है. और यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं एवं गृहेषु सत्तानां, जीव को भगवान याद आता नहीं है और जब घर गृहस्थी में जीव फंस जाता है तो फिर प्रमत्ता नाम यानी वो भगवान भजन से भक्ति से और ये भी भूल जाता है कि यह शरीर नाशवान है, काल इस विषय में कितना दुस्तर है, कभी भी काल आ जाएगा, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, मतलब एकदम प्रमत्त होते हैं, एकदम असावधान होते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं अपने इसी जीवन और इसी जीवन के अंदर सुखी रहना, अपने कुटुंबियों को सुखी रखना, केवल यही बात उनको याद रहती है और कोई काम उनको याद नहीं रहता है। बस उनको ऐसा लगता है कि इस संसार में जो मेरे होने का एकमात्र मकसद है, मैं अपने घर और घर वालों को सुखी रखूं, मेंटेन रखूं, हर चीज उनको प्रोवाइड करूं, जीवन का हर सुख प्रदान करूं, अपने घर में एकदम सोफिस्टिकेटेड लाइफ होनी चाहिए, एकदम सुविधाओं वाली लाइफ होनी चाहिए मेरी और मेरे बच्चों की, घर और घर वालों घर वाले एकदम परफेक्ट लाइफ जिए, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसी में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। ये नहीं सोचता कि ये करता रहूंगा तो मैं अपने वास्तविक जीवन के वास्तविक लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा। मनुष्य जीवन मिला है केवल यही प्राप्त करने के लिए कि मैं सुखी जीवन गुजारूं। सुखी जीवन की परिभाषा हर एक योनि में अलग होती है। एक कुत्ता भी सुखी जीवन चाहता है, वो क्या चाहता है कि मुझे पर्याप्त मात्रा में आहार मिलता रहे, मैथुन मिलता रहे और रहने के लिए जगह मिलती रहे, यही चाहिए उसको अपने जीवन सुखी जीवन गुजारने के लिए। तो क्या मनुष्य जीवन में बस यही प्राप्त करते करते जानवरों की तरह मर जाने के लिए है? नहीं, यहाँ पर बताते हैं विदुर जी को, विदुर जी कितना दुखी हो रहे हैं ये देखकर, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीयाय, कि वो घर गृहस्थी में इतना आसक्त हो जाता है और बेवकूफ हो जाता है, उसे बिल्कुल याद नहीं रहता कि मेरे वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है। अत्यक्रमाद यानी उसे याद भी नहीं रहता, अविज्ञात अनजाने में, कालः परम दुस्तर, काल कितना दुस्तर है हर क्षण में। वास्तव में भक्तों, एक मनुष्य को सदैव विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन किस प्रकार हर क्षण मृत्यु के मुख में जा रहा है, ये काल हमारी कितनी आयु खा चुका है। जो आज 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के, 50 साल के हैं, तो इतने बरस तो काल उसके खा गए ना, और वही तो सबसे सुंदर समय था जो कि समाप्त हो गया, जब शरीर स्वस्थ था, सुंदर था, कोई रोग नहीं था, बुढ़ापा नहीं था। जब हम अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो समय तो हम केवल अपने घर बार बच्चों को ही देते हैं, वो तो केवल बिजनेस करने के लिए, वो तो केवल धन अर्जित करने के लिए। आगे बुढ़ापे में क्या भजन करेंगे? बुढ़ापे में तो केवल टॉयलेट ही चले जाए, यही बड़ी बात है, है ना? इतना सा काम भी यदि किसी और की सहायता के बगैर यदि कोई बूढ़ा कर लेता है तो बड़ी बात है। घर के जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं उसके बारे में, यदि कोई मित्र और दूसरे संबंधी पूछते हैं कि अब कैसे हैं पिताजी या माताजी, तो बड़ी प्रशंसा के साथ कहते हैं कि अभी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिना किसी की सहायता के टॉयलेट चले जाते हैं, बहुत भारी पुरुषार्थ कमा रहे हैं। मतलब बुढ़ापे में यदि आप अपने आप टॉयलेट में चले जाओगे तो भी बड़ी बात है, भजन करना है तो आज करो। आगे चलकर तो बस इतना ही सक्सेसफुल जीवन रहेगा कि अपने से बाथरूम चले जाओ, शौच आदि कर लो। जो भगवत भजन करने का वास्तविक समय था उस समय तो प्रमत्त रहे, यहाँ पर बता रहे हैं विदुर जी के प्रमत्ताना, सदैव लापरवाह रहते हैं, असावधानी रहते हैं। अगर उनसे कोई पूछे कि आप क्या कमा रहे हो तो बहुत खुशी से बताएंगे इतना कमाते हैं, मतलब और भी बताएंगे, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस वगैरह। लेकिन पूछा जाए जब करते हैं तब कभी उनको ऐसा लगता भी नहीं है कि करना चाहिए। हाँ मैं जब भगवान के पवित्र नाम का जप भी करता हूँ, अगर किया भी कुछ लोग, अगर थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव माइंडेड हैं और जानते हैं कि भाई हाँ भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, उनसे भी पूछो कितना जप करते हैं, बोला एक राउंड सुबह कर लेता हूँ, एक राउंड शाम कर लेता हूँ, बस यही इतना ही काफी है, बाकी समय कितना राउंड करते हो, बाकी सारा जो कार्य है भौतिक कार्य के लिए कितना समय निकालते हो, जो जप के लिए एक राउंड करते हो, तो अपने आप को बहुत बड़ा सत्कर्मी मान लेते हो क्या? यही लक्ष्य है? जरा हिसाब तो करो कि बाकी काम को कितना समय देते हो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जीव कितना स्ट्रगल करता है, कितना भोग करता है, भोजन करने बैठते हैं तो क्या एक चपाती खाते हैं और एक ही समय खाते हैं, बार बार खाते हैं और कितना तो खाना पड़ता है, और एक ही चपाती नहीं कितनी वैरायटी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रायता भी चाहिए और चटनी भी चाहिए, उसके ऊपर मीठा भी चाहिए, वो भी कई बार खाते, 3-4 बार, बाकी नाम जप करने की कोई विचार नहीं आता कि मुझे कितना जप करना चाहिए, कम से कम एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, आपको पता होता है ना, हर चीज का डिसीजन है कि भाई एक दिन में आपको इतना खाना है, इतना पढ़ना है, इतना टीवी देखना है, इतना गेम, इतना स्पोर्ट, हर एक चीज के लिए आपने एक पर्टिकुलर समय और मैक्सिमम क्वांटिटी संभाल के रखिए, भाई इतना मुझे करना है। क्यों आज का मनुष्य को ऐसा लगता है कि भजन और भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो हमारी मर्जी पर ऑप्शनल है, करें तो करें, ना करें तो ना करें, कितनी करनी है वो भी हमें खुद ही डिसाइड करना है, बाकी सब तो बहुत जरूरी काम है, वो तो एनी हाउ हमें करने हैं, सब जगह रूल्स हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, हर चीज को ऐसा लगता है ऊपर से ऑर्डर है, भाई इतना चलाना है, ऐसे इस स्पीड से चलाना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज के लिए आपने एक क्वांटिटी फिक्स कर दी है, बाकी भक्ति की कोई संख्या नहीं है, भक्ति करने के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बाकी सारा इंद्रिय तृप्ति का सारे काम के लिए बहुत समय देना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इंश्योरेंस करानी है, ये कराना है, इसके साथ भी ये पहनना, वो पहनना, इधर घूमना, वो घूमना, मतलब बहुत बहुत आवश्यक है ये सारे काम, तो हमें बहुत, एक बच्चा पैदा होता है 1.5 साल की उम्र में उसको पूछना शुरू कर देते हैं, आपका बच्चा अभी तक स्कूल में नहीं बैठा, अभी तक पढ़ता नहीं है, एबीसी भी नहीं सीखा, ये सब नहीं करता है तो इतना ज्यादा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन बूढ़ा हो जाता है और भगवान की भक्ति नहीं करता तो कोई उंगली उठा के ये नहीं कहता क्या जीवन दिया तुझे, भक्ति करी नहीं, पूरी जिंदगी गुजार दी अपनी, और तो छोड़िए पूरी जिंदगी ये जानने की जिज्ञासा तक नहीं करता कि ये जीव जब मैं इंसान बना हूं तो भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन जब दिया है तो मुझे रेगुलर कितना भजन करना चाहिए, ये भी तो पता लगाना चाहिए ना कि मैंने बाकी सारे काम के लिए इतना इतना समय निकाला होता है, इतनी इतनी क्वांटिटी हमें करना होती है, तो क्या भक्ति करने के लिए भी कोई क्वांटिटी फिक्स है? क्या शास्त्रों को खोजकर या वैदिक अथॉरिटी से कभी ये मालूम नहीं करना चाहिए क्या हमारे जीवन का, क्या हमारे जीवन के लिए क्या आदेश है कि हमें कितना भजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये कितना अजीब है कि कोई ये तक नहीं जानता है कि शास्त्र में मेरे जीवन के विषय में क्या लिखा गया है कि भौतिक कार्य कितना समय तक करूं और आध्यात्मिक कार्य के लिए कैसे समय निकालूं और कैसे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ूं, केवल इस संसार में ही ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करूं और ज्यादा से ज्यादा आसान जिंदगी जीऊं, क्या यही जीवन का डेस्टिनेशन है? क्या यही लक्ष्य है? क्या इसीलिए मनुष्य बने हैं? हर एक कार्य को टाइम देना, केवल भक्ति ही ऐसी है, दिल करे तो करे, दिल ना करे तो ना करे, उसके लिए टाइम निकालते नहीं है, टाइम मिल जाएगा तो भक्ति करेंगे, यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। भौतिक क्रिया करने के लिए इतना सीरियस होते हैं, बस भक्ति ही हम अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसा अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया, बस कल से मैं एक माला करूंगा और
फिर थोड़ा करने के बाद फिर मैं दो माला करूंगा, फिर आगे जाके नहीं नहीं दो माला होती नहीं है, मैं वापस से एक करूंगा। कभी डिसाइड कर लिया कि भाई 16 करूंगा, फिर वापस नहीं हो पाएगी, मैं 8 करूंगा। मतलब ये डिसीजन आप कैसे ले सकते हो कि आपको कितना करना है, ये तो गुरु महाराज को लेने दो कि आपको कितना करना है, और उसके लिए एनी हाउ आपको समय निकालना है कि कितना जप करना है, कितनी भक्ति करनी है, कब करना है, और कितना अपनी भक्ति में सीरियस रहना है, कितना सिंसियर रहना है। मगर यहाँ तो जैसे यहाँ पे बताया, एवं गृहेतु एहम गृहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तदीहया, कि जीव सदैव घर में ही आसक्त रहता है और प्रमत्त रहता है, उसे याद नहीं रहता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये सब याद कराएंगे लास्ट में जब यमराज जी आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे, अत्यक्रमाद विज्ञात कालह परम दुष्करा, धीरे धीरे जीव का बुढ़ापा आता जाता है, समय समाप्त होता जाता है और काल की गति दुर्लंघ्य है, उसको पार करना अत्यंत कठिन है। अनुवाद देखिए, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर नित्य काल अनजाने ही धर दबोचता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं विजयी हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त ग्रस्तियों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो नित्य काल के प्रति अचेत रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत काल के विपरीत उसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते हुए एक क्षण को ठीक कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं कि हमारे जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है। जब आयु समाप्त हो जाएगी तो अपनी पूरी जिंदगी में कमाए हुए ढेरों से सोने के सिक्के यदि दे देंगे तो एक क्षण भी हम उस काल से ले नहीं सकेंगे कि भाई थोड़ा समय मुझे दे दो, मुझे कोई कार्य करना है, मैं वो कर लूं फिर मुझे लेके जाना। नहीं, समय समाप्त हो जाएगा, वो ले जाएगा। इसलिए समय बहुत मूल्यवान है, हमें समय की बहुत कदर करनी चाहिए, अपने समय को यूं जिस प्रकार आजकल जीव अपने समय को कैसे बिता रहा होता है। बोर हो रहा था इसलिए सोचा चलो सिनेमा चला जाऊं, बोर हो रहा था चलो दोस्तों आ जाओ पार्टी करते हैं। ये जीवन इसके लिए नहीं है। क्यों मिला है ये जीवन, आगे श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए मिला। बस यही जीवन का लक्ष्य है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसना पड़े, 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। तो उसके लिए कार्य करना चाहिए ना, तो हमें अपने जीवन में ऐसा कार्य करना है जिससे हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएं, हम 84 लाख योनियों में भटकने से बच जाएं। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु रोग तथा बुढ़ापा से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, ना तो वह कभी जन्मता है न कभी मरता है, मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में तुम्हारी समस्त कष्टों का वास्तविक कारण है ये तुम्हारा देह, जिसको सारा जीवन संभालते रहते हो, जिसको सारा जीवन खिलाते रहते हो, सजाते रहते हो। इस देह को यदि तुमने खाली इस तरह से यूज किया तो कल ये देह तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। एक पशु यदि मर जाता है तो उसकी मृतक देह भी कार्य में आती है। उसके जो मृतक शरीर है, उसकी जो स्किन होती है, उसको भी कार्य में लाया जाता है, और भी जो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो काम में आते हैं। परंतु एक मनुष्य मर जाता है ना, उसके शरीर का कोई भी उपयोग नहीं होता। उसे या तो जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या चील और गिद्धों को खाने के लिए दे दिया जाता है। इस गिद्धों को खाने के भोजन का इतना ज्यादा उसको समय देना, इसके लिए थोड़े ना ये जीवन संसार में मिला है। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई कार्य है, इसका यदि कोई सफल, इसको सक्सेस करना है, तो उसका एक ही काम है कि भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्कर से बचकर भगवान के धाम को प्राप्त किया जाए। और यदि यह कार्य नहीं किया जाता तो समझो अपने जीवन का, अपने मनुष्य देह का कोई भी फायदा नहीं उठाया। घाटे में रहता है वो मनुष्य जो इस संसार में आता है, जन्म लेता है और भक्ति करके अपने जन्म मृत्यु के चक्कर को नहीं खत्म करता। इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, प्रमत्ता नाम तदीहया, वो भूल जाता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य होकर बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, यह मोह कहलाता है। श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर कह रहे हैं कि जीव को याद ही नहीं रहता कि ये काल कितना बलवान है और हर क्षण हमारी जीवन की अवधि को कम करता रहता है। इससे पहले कि जीवन समाप्त हो जाए, हमें अपने वास्तविक समस्याओं का हल निकालना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है, लेकिन हम तो उल्टे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। केवल यही याद रहता है कि मैं किस तरह से खुद खुश रहूं और अपने परिवार को खुश कर सकूं। उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य होकर बीतता जा रहा है, उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है। जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की तो बनी रही है, उसके लिए तो कोई सॉल्यूशन निकाला ही नहीं है। फिर तो बारंबार फंसना पड़ेगा, बारंबार भटकना पड़ेगा। क्या इसीलिए भगवान ने यह मनुष्य जीवन दिया है? तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यही तो मोह है, यही तो प्रमत्ता है कि हम इस बारे में विचार तक नहीं करते। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रति जागरूक रहता है, उस पर मोह प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत की मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण ना था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद अर्थात मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी क्षणिक आकर्षण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह भगवान के नित्य धाम अर्थात परब्रह्म में ही सुखी रह सकता है, जहाँ के बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन नहीं प्रदान कर सकती है, नित्य जीवन के लिए ब्रह्म ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुख के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान की भक्ति के प्रति यदि वो जागृत हो जाता है, तो फिर ये भौतिक मोह अर्थात ये जो आकर्षण भौतिक माया का है वो उस पर जादू नहीं डाल सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उसे तो इस संसार के सारे सुख जो हैं वो बिल्कुल तुच्छ लगते हैं। इस संसार के सुख की बात छोड़ो, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सुख की ओर भी उसका कोई आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि वो भी एक दिन समाप्त हो जाने वाले। जीव क्योंकि शाश्वत है तो उसे ये पता होता है कि मुझे शाश्वत सुख तभी मिलेगा जब मैं भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा, भगवान के श्री चरणों की सेवा को प्राप्त करूंगा, तो फिर उसके जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होता है, जहाँ से वापस लौटना नहीं पड़ता है, जहाँ से इस दुखों भरे जीवन में वापस आना नहीं पड़ता है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है। ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुख के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर देता है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपको पता चल जाए कि वास्तविक सुख, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, परंतु जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक मैं ये भौतिक सुख भी लेता रहूँ, इसमें भी आनंदित होता रहूँ, नहीं, फिर आपको बलिदान करना पड़ेगा, अपनी नींद का बलिदान करना पड़ेगा, अपने इस वास्तव इस भौतिक जगत में जो भौतिक वस्तुओं की ओर आसक्ति है उनका बलिदान करना पड़ेगा, ताकि हम वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। जिनका आकर्षण अभी भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में लगा रहेगा वो तो वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है उसे कितना भी भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं है। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को यमराज महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो उपदेश दिया गया है कि एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीयः, कि जो सदैव गृह में ही आसक्त रहते हैं, भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहते हैं, जिन्हें ये याद नहीं रहता कि काल धीरे धीरे आ रहा है, मेरी समस्त आयु समाप्त हो जाएगी, मृत्यु के पास पहुंच रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने जीवन के लक्ष्य की ओर नहीं जाते, ये युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए उपदेश नहीं है। ये तो धृतराष्ट्र जैसे और हम जैसे मूर्खों के लिए है कि हमें ये जागना चाहिए, जागृत रहना चाहिए कि हमारे जीवन का एक एक क्षण किस तरह बीत रहा है। आधे से ज्यादा जीवन गुजर गया और आज तक अपनी माला सही नहीं हो रही है, आज तक भक्ति नहीं सही हो रही है, तो फिर बाकी का समय भी इस तरह से गुजर जाएगा। कैसे? अत्यक्रमाद अविज्ञात काल परम दुष्कर, अचानक से आएगा काल और अचानक अनजाने में ही दबोच लेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो अभी समय है उसी में हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर सके। आगे सुख गोस्वामी कहते हैं, विदुरस तदभिप्रीत्या धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुरस्तदभिप्रेत्या धृतराष्ट्रम अभाषत। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। विदुरस्तद अभिप्रेत्य, विदुर महात्मा विदुर ने तद अभिप्रेत्य जब ऐसा जाना कि धृतराष्ट्र की अब तक बुद्धि इसी घर गृहस्थी में राज्य में लगी हुई है, तब उसने क्या किया, धृतराष्ट्रम अभाषत। तब उन्होंने धृतराष्ट्र से क्या ऐसा कहा, क्या कहा, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम। सबसे पहले उनका पहला अटैक था कि वो उन्हें ये याद दिला रहे थे कि अब तक अपने आप को राजा समझे हुए हो, अब तुम राजा नहीं रह गए, अब तुम्हारा राज्य चला गया, और जिस तरह से तुम्हारा राज्य चला गया एक दिन तुम्हारा शरीर भी चला जाएगा, इसलिए निर्गम्यताम, इसलिए तुम कृपा करके बाहर निकलो। और ऐसा उसको समय नहीं दिया कि चलो ठीक है कल निकलना, अभी रात का समय है, सब सो रहे हैं, युधिष्ठिर इत्यादि सब सो रहे हैं, लेकिन और इस समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए हैं और कह रहे हैं राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी करिए, उठिए उठिए, जल्दी कीजिए। हे राजन, हालांकि अब राज्य धृतराष्ट्र के पास नहीं था, अब तो युधिष्ठिर महाराज राजा थे, लेकिन फिर भी पहले के राज्य पने के अभिमान को याद दिला रहे हैं ताकि उनको सुनते ऐसा लगे कि हाँ मेरा राज्य चला गया, वो दुखी हो जाएं और उनको ये एहसास हो जाए कि जिस प्रकार राज्य चला गया उस तरह जीवन भी तो जा रहा है। तो ये जीवन भी इस तरह आज हम देखते हैं लोगों को समय बीतता जाता है फिर भी अपनी पोजीशन बनाए रखने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। कोई प्राइम मिनिस्टर होता है और समय जब समाप्त हो जाता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, फिर भी लिखता है एक्स प्राइम मिनिस्टर ना, अपनी नाम के साथ वो पदवी जोड़े रखने में उसको आनंद अनुभव होता है। तो इसी बात को यहाँ पर दिला रहे हैं याद। वो कह रहे हैं कि पहले जब तुम राजा थे तब तो तुम आसक्त थे, लेकिन अब तो तुम राजा भी नहीं रहे, इसलिए निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी करो, निकलने की कोशिश करो यहाँ से। हैरत है, तुम्हारा राज्य भी चला गया और अभी तक तुम उन्हीं पांडवों के साथ उन्हीं उस सुख का भोग कर रहे हो जिन पांडवों ने तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया। छी छी, तुम्हारे दिल में अभी तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है कि इन सारे पांडवों ने मिलकर मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, फिर भी तुम इन्हीं के टुकड़ों पर बैठ के पल रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं करता कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वैराग्य उत्पन्न अभी तक नहीं होता तुम्हारे दिल में। वो शोर नहीं कर रहे थे, आराम से बोल रहे थे, जल्दी कीजिए, निर्गम्यताम शीघ्रम, चलिए चलिए निकलिए यहाँ पर, अब रहना ही नहीं चाहिए आपको, यहाँ से निकलने का विचार करो। पश्येदम भयम आगतम, अब देखो तो सही मृत्यु आने वाली है, जरा विचार करो, मृत्यु आ गई और इसी तरह तुम्हारा जीवन बीत गया, तो फिर क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की शुद्धि होगी? याद रखो, मरने से पहले भगवान में पूर्णतया चित्त लगना चाहिए, तभी शुभ गति होती है, नहीं तो संसार में चेतना रह गई और शरीर छूट गया तो बहुत बड़ा घाटा है। विदुर जी इस बात को समझाने का यहाँ पर धृतराष्ट्र को प्रयास कर रहे हैं कि राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम, आप देखिए मृत्यु आने वाली है, आपका पूरा जीवन समाप्त हो गया है, इस बुढ़ापे में भी आप अभी तक राज्य में आसक्ति लगाए बैठे हो। अनुवाद देखिए, महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाइए, विलंब न कीजिए, आप देखें कि भय ने किस प्रकार आपको अभिभूत कर रखा है। भयम आगतम, भय जो है वास्तव में मृत्यु का होता है, वास्तव में जीव हर किसी चीज से बच सकता है परंतु मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो मृत्यु का नाम ही सबसे ज्यादा भयावह है। कहते हैं डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है, मरने से सबको डर लगता है, इसलिए विदुर जी धृतराष्ट्र जी को कह रहे हैं कि राजन आप देख नहीं रहे, अभी मृत्यु काल तुम्हारे सर पर आके खड़ा हो गया है और अभी तक तुम्हारा चित इन भौतिक वस्तुओं में लगा हुआ है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराजा युधिष्ठिर क्यों न हो। अतएव वृद्ध धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता है। एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतः कानून के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने अधिकार से वंचित रह गए थे। वे इस शोक अवस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद यह निराशा कुछ कम हो गई थी। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्प वर्यक पुत्र छोड़ गए थे, अतएव धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि वे असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना सफल हो रही थी। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जी थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराजा युधिष्ठिर के ने धृतराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहे। अथवा महाराज युधिष्ठिर ने राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपना महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इने गिने दिन भी काट रहे थे। विदुर साधु थे तथा धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे, अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा तो नहीं थे। हर व्यक्ति नित्य काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा जवाहर बाटा को उपदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा जवाहर बाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या राजा होता है और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से इनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उसके तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा, यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही तब विदुर विद्यमान ना रहे।
श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाया कि धृतराष्ट्र पहले राजा बन नहीं सके और पांडवों का राज जब उन्होंने हत्या लिया था पांडवों के मृत्यु के बाद, क्योंकि उनके पुत्र सारे छोटे थे, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा यही थी कि मैं ही राजा बनना चाहता हूँ। राजा बनने के स्वप्न देखते रहते थे और अंततः उन अपने बेटे की महत्वाकांक्षा में उसे अपनी इच्छा दिखती थी और वो चाहता था कि किसी तरह से दुर्योधन को राज्य मिल जाए, परंतु सारे पुत्रों की मृत्यु भी हो गई। अब वो राजा हो ही नहीं सकते, उसका तो कोई कुटुंब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ये युधिष्ठिर महाराज की करुणा थी कि उसे बिठाया हुआ था, उन्हें ये सम्मान दिया हुआ था, उसको अभी तक राजा कहते थे, लेकिन विदुर जी उनको ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र अब तुम्हें इस महत्व आकांक्षा से, इस राज्य के लोभ से, मोह से बाहर निकलना। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमावतम, तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, मरने वाले हो, अभी तक तुम राज्य में आ सकते हो तो तुम शीघ्र करो, जल्दी करो और निकलो यहाँ से। तो इतना कहने के बाद समझो धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे हैं कि देखो विदुर, अगर मृत्यु आ रही है, क्योंकि विदुर ने क्या कहा था कि भयम आगतम, भय आ रहा है, मृत्यु बहुत निकट आ गई है, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि यदि मृत्यु आ गई है तो क्या भागने से वो रुक जाएगी? भागने से मृत्यु रुकेगी नहीं, तो विदुर इस मृत्यु का कोई उपाय करना चाहिए ना, कोई उपचार करना चाहिए। इसका उत्तर विदुर जी कल देंगे, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।